उसको चला सकते हैं, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। पर जब तन ठीक है मन ठीक नहीं है तो मजा नहीं आता है। दैट इज वाई वी से माइंड ओवर मैटर। कौन पावरफुल है अभी? माइंड है, है? संभल के बोलना पड़ेगा। तो आज का विषय है व्यर्थ की समाप्ति। आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए या ऐसा समझे कि आप सबकी व्यर्थ समाप्त हो गया? जो समझते हमारे जीवन से व्यर्थ की अविद्या हो गई, हाथ उठाओ। कोई है अभी तक भी? कुछ ना कुछ चलता है। बाबा क्या चाहते हैं हमारे से? तो बाबा तो चाहते हैं व्यर्थ की अविद्या हो जाए, माना व्यर्थ क्या होता है उसका ज्ञान ही नहीं। अविद्या माना। तो वैसे तो बाबा हम बच्चों को बार बार याद दिलाते हैं कि संगम युग में आपको बहुत खजाने मिले हैं, बहुत अनगिनत। अगर इन सब खजानों को हम शॉर्ट में अगर सोचे तो हम कह सकते हैं कि चलो हमारे पास 7 प्रकार की खजाने हैं। सबसे पहला खजाना है संकल्प, दूसरा खजाना है समय, तीसरा खजाना है श्वास, चौथा है हमारा एक एक शब्द वचन, फिर कर्म, ज्ञान रतन और विनाशी धन। इन सब बातों को हम खजाने के रूप में देखें। जब हम इसको खजाने का रूप देते हैं तभी हम जमा कर सकते हैं। जैसे पैसे को जमा किया जाता है ना, खर्च नहीं किया जाता है। जमा करने के लिए क्या करना है? कम खर्च, तो सेव करना पड़ेगा तो तभी जमा होगा ना। और जिसके पास सेव होता है ना वो सदैव सेफ रहते हैं, उनको थोड़ा दिल मजबूत रहता है क्योंकि डर नहीं रहता, हमारे पास जमा है उससे हम खा सकते। परंतु जमा तब होंगी जब व्यर्थ नहीं होगा। अगर कोई कमाई करे 50% व्यर्थ गिरावे, 50% जमा करे, तो उसके खाता कैसा रहेगा? जीरो ही रहेगा। एक तरफ कमाया दूसरी तरफ खर्चा किया, कुछ नहीं खाया पिया। तभी बाबा कहते ना कि बाबा को भी 4 प्रकार के बच्चे हैं। चलो 3 प्रकार के बच्चे हैं। एक है कमाया खाया जमा किया और दान दिया, दूसरा है कमाया खाया जमा थोड़ा और थोड़ा दान दिया, और तीसरा है कमाया और खाया, न जमा किया न दान दिया। तो हम किस कैटेगरी में हैं? तो दाता बनना है, देने वाले बनना है, तो पहले जमा चाहिए, और जमा माना ही व्यर्थ खत्म। माइनस प्लस दोनों नहीं हो सकता, या तो प्लस या तो माइनस। तो सबसे पहले हम देखें व्यर्थ की लिस्ट में सबसे पहली बात आती है संकल्पों में व्यर्थ, क्योंकि वही बीज है ना। जब व्यर्थ संकल्प चलता है तो समय सब खजाना खर्चा ज्यादा हो जाता है। तो आप सभी को अभी व्यर्थ संकल्प चलती है क्या मधुबन में भी? देखो देखो सच्ची सच्ची देखो हाँ? मधुबन में तो व्यर्थ नहीं चलना चाहिए, माया ही नहीं आता है इधर, माया को एंट्री नहीं है हाँ? तो व्यर्थ किसको कहा जाता है पहले तो उसको समझे ना हाँ? तभी हम उसको समाप्त कर सकते। आप व्यर्थ किसको कहते हो हुँ? नहीं नहीं व्यर्थ किसको कहते हाँ? जिसका कोई अर्थ नहीं है वही व्यर्थ है। जिसका अभी वर्तमान समय के साथ कोई अर्थ नहीं है वो है व्यर्थ। और मोस्टली देखा जाए ना व्यर्थ संकल्प तीन प्रकार के चलते, एक तो बीती हुई बातों के बारे में, दूसरा आगे आने वाले बातों के बारे में फ्यूचर के बारे में, और तीसरा दूसरों के बारे में परचिंतन के रूप से। तो आप चेक करके देखिए आपके मन में इन तीन कैटेगरी संकल्पों के अंदर से कौन सा ज्यादा चलता है, कौन सा हाँ? नहीं ज्यादा मात्रा में कौन सा? बीती हुई बातों के बारे में। तो बाप दादा ने तो इशारा दे दिया अभी से लेकर पास्ट इज पास्ट, अभी तक भी हमारे मन में अगर व्यर्थ है तो इसका कारण क्या? व्यर्थ है अंधियारा अज्ञान। तो अगर ज्ञान में आने के बाद भी अज्ञान का अंश है तो इसका मतलब कि ज्ञान की रोशनी में कोई कमी है। समर्थ मना रोशनी, व्यर्थ मना अंधकार। तो जिस बात के बारे में आपके मन में व्यर्थ चलता है उसके बारे में कुछ रोशनी की कमी है, चाहे अपने बारे में, चाहे परिस्थिति के बारे में, दूसरों के बारे में ज्ञान कम है। तो हमको इसको समाप्त करना है तो क्या करना है हा? तो उसके बारे में और रोशनी हम बुद्धि में लाए, ज्ञान के जिज्ञासा रखे, ज्ञान को प्राप्त करें। जैसे अभी घर में अंधियारा होता है तो आप क्या करते हो? अंधियारा है रट नहीं लगाते, स्विच ऑन करते, तो अंधकार आप ही भाग जाती, आपको भगाने की जरूरत नहीं। तो हमारा स्विच काम कर रहा है या नहीं? ज्ञान की स्विच, अगर हमारा ज्ञान रूपी स्विच ही काम नहीं करता है तो रोशनी आएगा ही नहीं, हम अंधकार में ही रोते रहेंगे। इसलिए ज्ञान बहुत जरूरी है, हर बात का ज्ञान बाबा ने दे दिया है, परंतु हमको उसको समय पर याद करना है और यूज करना है। आगे आने वाली बातों के बारे में भी जरूरत नहीं है, अगर हमारा वर्तमान समय अच्छा है तो भविष्य तो अच्छा ही होगा हाँ? तो इसलिए हमको ये पक्का निश्चय होना चाहिए हाँ? ये स्लोगन आप याद रख दीजिए, आज भी बाबा ने कहा ना मुरली में, ये ड्रामा अनादि अविनाशी बना बनाया है, जो हूबहू कल्प पहले माफिक रिपीट होगा, ये समझ के हम निश्चिंत रहे, केयरफ्री रहे। परंतु किसी किसी के मन में ये प्रश्न आता है, अगर कल्प पहले भी हुआ था तो अभी भी हो रहा है तो कोई नई बात नहीं। तो इसलिए हमको व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति के लिए सबसे पहली विधि है ज्ञान को हम प्राप्त करें। जिस बात के बारे में व्यर्थ चलती है उसके बारे में हमको और ज्ञान चाहिए। दूसरा व्यर्थ इसलिए चलता है क्योंकि हम संकल्प की वैल्यू को नहीं जानते, इसलिए खर्चा ज्यादा कर रहे हैं। समझते कि संकल्प मुफ्त में है, मुफ्त किसी को भी मुफ्त का माल मिलता है तो उसको क्या खर्च करने में कोई चिंता नहीं, मुफ्त का है ना। जैसे उसी दिन कोई फोन में बात कर रहे थे, हम बहुत समय से बात कर रहे थे, हमने पूछा कि आप इतना समय में कितना लंबा बात कर रहे, सिस्टर फ्री कॉल। उन्होंने कहा चिंता नहीं कीजिए, ये फ्री कॉल है, पैसा फ्री है, समय फ्री है क्या, संकल्प फ्री है क्या। आप इतनी मिनट में क्या क्या बातें सुनते तो दिमाग तो खराब होंगे ना। तो पर हम समझते कि संकल्प मुफ्त है, और टेलीफोन में तो पैसा भरना इसलिए कहते कि फ्री कॉल है, परंतु संकल्प भी तो वैल्यूबल है ना। तो एक एक संकल्प की क्या वैल्यू है। जैसे घर बनाते हैं तो एक एक ईंट की वैल्यू होती है, एक ईंट भी ठीक नहीं है तो इमारत गिर जाता है। तो हम ऐसे उसको वैल्यू दे दें, कहते हैं ना इंग्लिश में, व्हेन यू बिल्ड ए हाउस एवरी ब्रिक काउंट्स, बट व्हेन यू बिल्ड ए कैरेक्टर एवरी थॉट काउंट्स। तो गिनती करके यूज करना मुफ्त का नहीं है ये, क्योंकि उसका परिणाम फिर सब खजाने के ऊपर आ जाता है। और संकल्प की और गहरी सूक्ष्म वैल्यू क्या है, संकल्प बीज है, जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल पाएंगे। कभी कभी हम कह देते हैं मुख से निकल गया, मैंने सोचा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बिना सोच के मुख में शब्द नहीं निकल सकता है, कर्म नहीं कर सकते। भले आप कॉन्शियसली सोचते हैं, अनकॉन्शियसली सोचते हैं या सब कॉन्शियसली सोचते हैं, सोच तो चलता ही है। तो इसलिए अगर हमको संकल्पों को समाप्त करना है, व्यर्थ को, हम पहले से उसकी जानकारी अपने पास रखें। परखने की शक्ति, जिसके पास परखने की शक्ति है और वो परख लेते हैं ये व्यर्थ है ये समर्थ है, तो फिर वो व्यर्थ को कभी अपनाएंगे नहीं। जैसे हंस का मिसाल देते हैं ना बाबा, हंस के अंदर परखने की शक्ति है, वो कंकड़ और पत्थर और मोती को मिक्स करके रखेंगे, वो पत्थर नहीं छुकेगा। तो क्या हमको इतना भी अकल नहीं है, ये व्यर्थ है, जो कोई अर्थ नहीं, ये चला गया है, फिर भी हम उसके बारे में क्यों सोच रहे हैं, ये ठीक नहीं है। इसमें हमारा आत्मा के अंदर कमजोरी आ जाती है, तो शक्तिशाली नहीं बन सकते। और संकल्प को परखने के लिए बाबा ने एक यंत्र भी दिया है, ऐसा भी नहीं कि नहीं है, बाबा ने दिव्य बुद्धि नेत्र दिया है, जिसके आधार से अपर को ये व्यर्थ है ये समर्थ है ये नकारात्मक है ये सकारात्मक के परख सकते हैं या नहीं। क्या आपको टाइम ही नहीं है परखने की, फुर्सत नहीं है, क्योंकि सारा टाइम दूसरों को देखने में चला जाता है, अपने लिए टाइम नहीं है, तो परख नहीं सकते। तो इसके लिए हमको, चलो हम एकदम समाप्त नहीं कर सके, फुल स्टॉप नहीं लगा सके, तो कम से कम संकल्प की गति को कम तो करो। कोई भी कार को स्टॉप करने के पहले स्लो करना होता है, एकदम ब्रेक मारेंगे तो कार में कार के अंदर वालों को भी धक्का लगेगा, सामने कार वालों से आपका टकरा हो जाएगा। तो क्या करना है, समाप्ति के लिए पहले स्लो करना है, धीरे सोचना है, आता है धीरे सोचना, यही स्लोगन हम अपने पास रखें, कम सोचना है, धीरे सोचना है, अच्छा सोचना है। तो इसके आधार से आपकी सोचने की गति जस्ट स्लो हो जाएगा, फिर आप उस संकल्प को स्टॉप कर सकते हैं। तो इसलिए ज्यादा नहीं सोचना है, कोई भी काम ज्यादा सोचने से नहीं बनता है, कुछ भी नहीं होता है। रिपीट भी नहीं करना है। उसी दिन दादी कह रही थी ना, एकाग्रता का मतलब क्या होता है, एक संकल्प दोबारा रिपीट भी नहीं करना है, इतना तक हमको समाप्त करना है। शक्तिशाली संकल्प की निशानी ही ये है, वो दोबारा रिपीट नहीं करते। जैसे शक्तिशाली बीज को धरनी पर बोते हैं, तो एक बार बोया विश्वास से, तो आप थोड़ा सा वेट करेंगे ना, जब टाइम आएगा वो बीज जाड़ बनेगा, फल निकलेगा। पर आपको निश्चय है हमने शक्तिशाली संकल्प किया है। तो शक्तिशाली संकल्प एक बारी करते हैं बस, बार बार रिपीट नहीं करते, यू नो, बार बार उसका सिमरण नहीं करते। क्योंकि संकल्प की शक्ति के साथ साथ हमारे अंदर धीर्यता भी चाहिए। अगर हमने संकल्प शक्तिशाली किया, हमको विश्वास ही ये सिद्ध होगा, तो देन वेट, क्योंकि हर संकल्प का, हर बीज का सीजन होता है। जिस सीजन में जो फल निकलता है वही फल निकलेगा, उसके पहले भी नहीं, तो फिर हम अधीर्य हो जाते। तो आप पहले ये साधन अपनाइए स्लो करने का, संकल्प को धीरे सोचने का। तो अभी देखो, फॉर एग्जाम्पल, एक घंटे में कितना सेकंड है, एक मिनट में कितना सेकंड है, 60 सेकंड। तो कितना संकल्प चलता है आपके मन में 60 सेकंड में? चलो हम देखते हैं, एक सेकंड में 2 संकल्प किया, तो एक मिनट में कितना संकल्प हुआ, 120 सोचा आपने एक ही मिनट में, टू मच है ना। तो फिर हम शक्तिशाली कैसे बनेंगे? तो स्लो करने का मतलब कि आज एक्सपेरिमेंट करना, 2 सेकंड में 1 संकल्प, अभी करते हैं 1 सेकंड में 2 संकल्प, आज से करना 2 सेकंड में 1 संकल्प, तो हमारा कितना हो गया, 30 संकल्प, स्लो डाउन हो गया ना। तो स्लो डाउन होने से, संकल्प कम होने से उसमें शक्ति होती है, और जिस संकल्प के अंदर शक्ति होती है वो सिद्ध होता है, सिद्ध होता है। संकल्प की सिद्धि के लिए बहुत सोचने की जरूरत नहीं, एक संकल्प करके छोड़ देना, फिर वो समय पर आप ही उसकी सिद्धि निकलेंगे। तो संकल्प, व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति के लिए दूसरी विधि क्या है, संकल्पों को हम ऐसे देखें, ये हमारी बुद्धि की खजाना है, मैंने बुद्धि की खुराक है, खाना है, संकल्प बुद्धि का खाना है। तो हमको कौन सा खाना खिलाना चाहिए बुद्धि को? शूद्र से ब्राह्मण बने, वेजिटेरियन बन गए, शूद्र से ब्राह्मण बने तो वेजिटेरियन बन गए शारीरिक रीति से, अभी ब्राह्मण से फरिश्ता बनना है, तो बुद्धि रूपी भोजन के ऊपर अटेंशन देना है, ऐसा नहीं बनेंगे फरिश्ता। तो बुद्धि रूपी, बुद्धि को कौन सा खाना खिलाना है, वो भी हमारा वेजिटेरियन होना चाहिए। तो आप सभी वेजिटेरियन हो, इस प्रकार से मन का भोजन खिलाने में व्यर्थ संकल्प भी नॉन वेजिटेरियन है, तो इस हिसाब से कौन है वेजिटेरियन? फरिश्ता ऐसे ही थोड़ी बन जाएंगे। तो आप इस दृष्टि से देखिए व्यर्थ संकल्प को, ये है नॉन वेज, ये मांसाहार है, ये प्रकार की इम्प्योर शुद्धि नहीं है, इसमें इम्प्योर है, हमको टच नहीं करना है। क्योंकि पास्ट हो क्या होता है, डेड संकल्प ना। पास्ट क्या है, डेड। तो आपने क्या दिया बुद्धि को, मांस दिया ना। अभी जिनावर को मारने के बाद वो खाते हैं, वो नॉन वेजिटेरियन। तो हम भी बीती हुई बातों के बारे में बुद्धि का भोजन दिया तो हम नॉन वेजिटेरियन बन गए। तो आज से लेकर ऐसा देखिए, कड़ी दृष्टि से, तो आप कभी व्यर्थ टच नहीं करेंगे। क्योंकि व्यर्थ की अविद्या के लिए व्यर्थ से वैराग्य चाहिए। जब तक आपके मन में व्यर्थ से वैराग्य नहीं आया है, व्यर्थ की अविद्या नहीं हो सकती, समाप्ति नहीं हो सकती। तो इसलिए पहले स्लो सोचे, धीरे सोचे और अच्छा सोचे, और बुद्धि को सालिम रखने के लिए चेक करो हम बुद्धि को क्या खिला रहे हैं, फिर खिलाओ, तो कभी भी आप फूड पॉइजन में सफर नहीं होंगे। फूड पॉइजन हो जाता है ना किसी को, ऐसे यहाँ पर भी हमको फूड पॉइजन हो जाती। व्यर्थ संकल्प एक प्रकार की पॉइजन है, हमको स्मृति से विस्मृति में ले आ जाता है। तो ऐसे ऐसे विधि को हमको अपनाना है। जैसे बाबा कहते ना कि खाली मन शैतान का घर है, आइडल माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। तो आप अपने मन को आदर्श मन बना लीजिए, आइडियल माइंड। आइडियल माइंड आदर्श मन माना, जिसके मन में कोई भी व्यर्थ नहीं चले, वो है आदर्श मन। तो आइडियल माइंड बिकम्स गॉड्स वर्कशॉप। तो ऐसे मन को बाबा चलाएगा, क्योंकि वो मन मनाभाव में सदैव स्थित रहते। चाहते तो सभी है, हमको व्यर्थ नहीं चाहिए, पर आ जाता है। कैसे आ जाता है, अपने को खाली रखा है। इसलिए बाबा कहते ना, अपने आप को वीआईपी समझो। हर एक सेकंड की, हर एक घंटे की दिनचर्या बनाओ। आपके पास कोई टाइम है ही नहीं जो व्यर्थ आ सके। कभी कभी बाबा को हंसी आती है, बच्चे कहते ना बाबा व्यर्थ संकल्प चलता। अरे बाबा कहता है कि देखो, कहते ना जिसके माथे पर मामला, उसको नींद कैसे आए। तो बाबा को आश्चर्य लगता है, ये बच्चे जिनके पास इतनी जिम्मेवारी है, वो कह रहे हैं बाबा को हमको व्यर्थ संकल्प चलता है। तो क्या वो जिम्मेवारी सब आपने निपटा दिया, अभी फ्री हो गए, अभी बैठ के व्यर्थ करे, अभी चालू भी नहीं किया वो जिम्मेवारी। तीन बड़ी जिम्मेवारी है, एक तो 63 जन्मों का पापों को भस्म करना है, मैं ही करना है अपनी बात, दूसरा नहीं कर सकता, और दूसरा 21 जन्मों का प्रारब्ध जमा करना है, और तीसरा सारे विश्व को मैसेज पहुंचाना है। अभी क्या पूरा किया जो हम बैठ के व्यर्थ सोचे। माना 63 जन्मों का पाप को भस्म हमको करना है, हमारा पाप दूसरा नहीं कर सकते, और 21 जन्मों का पुण्य का खाता हमको जमा करना है। कभी कभी भक्ति में कहते ना, चलो घर में एक व्यक्ति कोई दान पुण्य किया तो सारे घर वालों को मिल जाता है, ऐसा नहीं हो सकता। नो पार्टनरशिप। तो इतनी बड़ी तीन जिम्मेवारी है, उसके अलावा हमको व्यर्थ कैसे चल सकता है। मना कि हम जिम्मेवारी की स्मृति में नहीं रहते, अलबेलापन आलस्य में हो जाते, चले जाते। तो आप अपना अपॉइंटमेंट बना लो, बुद्धि को बिजी रखो, मन को बिजी रखो सारा दिन के अंदर। कोई भी स्थूल काम करते हुए बुद्धि से क्या सोचना है। तो हाथ कारड़े दिल यारड़े, हाथ काम करते रहे और विचार सागर मंथन करते रहेंगे तो बुद्धि खाली नहीं रहेगा, तो व्यर्थ आ नहीं सकता। क्योंकि व्यर्थ वास्तव में हमको भारी बनाता है, वेस्ट इज वेट, जिसके पास बहुत वेट होता है ना, वो क्या करते हैं इमिग्रेशन वाले, ग्रीन चैनल में जाना पड़ता है, यू नो, रेड चैनल में जाना पड़ता है, डिक्लेयर करना पड़ता है। यहां पर भी ऐसे ही, जो जास्ती वेस्ट सोचते हैं उसका वेट ओवर वेट हो जाता है, तो उसको कस्टम्स में क्लियर करना पड़ेगा, धर्मराजपुरी में रुकना पड़ेगा, सीधा नहीं जा सकते। सो अपने को हल्के रखो, ज्यादा नहीं सोचो। दादी तो कहती है सोचो ही नहीं, हम तो कहते कम से कम ज्यादा नहीं सोचो, कम सोचो। वही सोचो जो आपको बोलना है, और वही बोलो जो आपको करना है, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज आपको देते हैं, संकल्प को समाप्त, व्यर्थ को समाप्त करने के लिए, व्यर्थ को कम करने के लिए। आप देखो कि 2 सेकंड में एक संकल्प, 30 संकल्प से ज्यादा 1 मिनट में नहीं। तो सारे दिन में कितना हो जाएगा, 24 आवर्स। तो रिसर्च वालों ने देखा है कि 50,000 संकल्प चलते, ये तो टू मच है, इसलिए सारी बीमारी आ जाती। तो सबसे पहले संकल्पों की खजाने को हमको जमा करना है, तो व्यर्थ की समाप्ति वहां से चालू करना है। तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे समय व्यर्थ नहीं जाएगा। जब संकल्प सफल हो जाता है तो समय उसके पीछे ही है। आप संकल्प समय को अलग नहीं कर सकते हो। अगर व्यर्थ संकल्प चल रहा है तो आपकी मीटर भी चालू है, तो आपको दंड भरना पड़ेगा बाद में। तो इसलिए दोनों का खजाना हमारा नुकसान हो जाएगा, समय को भी, व्यर्थ समय को भी खत्म करना है, व्यर्थ संकल्प को भी खत्म करना है। तो समझा, व्यर्थ संकल्प को कैसे समाप्त करना है, स्लो करना है पहले, फिर स्टॉप करना है। एकदम स्टॉप नहीं कर सकते, वो तो अपने को दबाना हो गया, यू नो, दबा करके हमको संकल्पों की समाप्ति नहीं कर सकते। हाँ, स्लो करके, मन बुद्धि को समझा करके हम अपने को शक्तिशाली बना सकते। क्लियर हुआ? अभी दूसरी बात, समय, समय की क्या वैल्यू है? बाबा ने बताया कि संगम युग का 1 सेकंड सत्यु के 1 साल के बराबर। हाँ, तो हम समय को कैसे यूज करते? आप खर्चा करते हैं या जमा करते संकल्प को, समय को? हाँ, संकल्प समय को खर्च करते हैं या जमा करते, यूजिंग और स्पेंडिंग, क्या अंतर है? हाँ, समय को यूज करना, समय को खर्च करना, स्पेंड करना, क्या क्या फर्क है? हाँ, यूज करना माना अच्छी जगह पर यूज करना। अगर यूज नहीं करेंगे तो लूज हो जाएगा। जैसे अभी पैसा है, आप कोई भी खर्च करना है, 10 रुपये की चीज आप 9 रुपये की लेना कोशिश करेंगे ना, 1 रुपया बचाएंगे। तो ऐसे समय को भी हमको बचाना है, बचाने का तरीके इन्वेस्ट करना, यूज करना, यू नो, जितना हम समय को इन्वेस्ट करेंगे, जैसे बैंक में जमा करते हैं ना, तो इंटरेस्ट मिलती है ना। अगर बैंक में नहीं जमा करते तो घर में कबर्ड में रखेंगे तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो ऐसे समय को हम इन्वेस्ट करते हैं, यूज करते हैं सही रूप से, सफल करते हैं, तो हमको इंटरेस्ट भी मिलता है। क्या इंटरेस्ट मिलता है? आप में से किसी को अनुभव है? समय को सफल करने से हमको इंटरेस्ट मिलता है, खुशी मिलती है और क्या शक्ति मिलती है और क्या ओके इंटरेस्ट क्या मिलता है, ये सब फायदे हैं। इंटरेस्ट क्योंकि हम जमा करने की बैंक में क्यों इंटरेस्ट, हमको इंटरेस्ट मिलता है पैसा बढ़ जाता है, तो यहाँ पर भी हमको क्या इंटरेस्ट मिलता है, सबसे दुआएं, सबसे ब्लेसिंग्स मिलती है। ब्लेसिंग सबसे बड़ी इंटरेस्ट है, मुफ्त में मिलता है, ब्लेसिंग्स मांगने से नहीं मिलता। अगर आप सफल करते जाएंगे तो आप सबके लिए प्रेरणा मूर्त बनेंगे ना, तो आपको देख करके सबको प्रेरणा मिली, माना उन सब ने आपको इंटरेस्ट दी। तो कभी कभी हम कहते हैं कि आप ये पूछो अपने आप से, ब्राह्मण जीवन में हम ब्राह्मण जीवन में पुरुषार्थ के आधार से चल रहे हैं या मेहनत करके चल रहे हैं या दुआओं से चल रहे हैं। नहीं नहीं पूछना है, ऐसा ही नहीं बोलना है। परसेंटेज होता है, 100% हम दुआ नहीं कह सकते। जब प्रकाशमणि दादी कह सकती, वो तो कहती थी नो, हम तो दुआओं से चलते हैं। प्रैक्टिकली हम लोगों ने दादी का देखा जीवन से, कभी लगा ही नहीं कि कोई पुरुषार्थ किया। कभी कभी हम लोग पुरुषार्थ करते तो दूसरों को मालूम पड़ता है, कोई दिन साइलेंस रखते हैं, कोई दिन मौन रखते हैं, और अपने को सीरियस मुंह ऐसा हो जाता है, लोग समझते कि ये तो बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं, बात नहीं करना है, सीरियस लगता है कि पुरुषार्थ कर रहे हैं। दादियों में ऐसा लगा ही नहीं, ये साइलेंस में है, आज मौन में है, एकदम जैसे सीरियस बीमार लगते है। कभी कभी लोग पूछते भी है, आज ठीक है क्या, बीमार तो नहीं हो? अरे बीमार नहीं, हम तो साइलेंस रखा है पर लगते थे जैसे कि पता नहीं कुछ प्रॉब्लम आ गया हो। साइलेंस रखने का मतलब क्या होता है, हर्षित रहना अंतर्मुखता का चिन्ह है हर्षित मुखता, यहाँ अंतर्मुखी हो जाते तो सीरियस हो जाते डिसर्विस हो जाते, उसके पास दूसरे आएंगे नहीं, अरे बड़े इससे बात नहीं करना। मम्मा देखो, मम्मा की विशेषता थी अंतर्मुखता, पर मम्मा का मुख देखो पूर्णम चंद्रमा जैसे हर्षित मुख ना। तो हमको दुआएं मांगने से नहीं मिलता, परंतु हम समय को सफल करने से, सब खजानों को सफल करने से ऑटोमेटिकली। और तीसरा खजाना है श्वास। देखो एक मिनट में हम कितना बार अंदर श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं। डॉक्टर्स कहते हैं 18 बारी ब्रीद इन ब्रीद आउट, तो समझो हम कितना समय हर श्वास में बाबा को याद किया, कितने श्वास तो ऐसे मुफ्त से चला गया। अगर कौन से श्वास हमारा आत्मा शरीर से निकलता क्या पता, अभी सुना ना वसंती बहन का बाप, वो तो ऐसे ही सोया हुआ था, परमानेंट ही सो गया, कुछ क्या पता हमको नेक्स्ट श्वास हम लेते ही या नहीं, नहीं? तो इसलिए हमको श्वासो श्वास, मम्मा तो कहती थी हर श्वास को अंतिम श्वास समझो, तभी श्वासो श्वास आपको बाबा की याद रहेंगे, अंतिम श्वास है। जब तक दूसरा श्वास हम लेंगे तभी ठीक है, अभी ये अंतिम श्वास है तभी हमारा सफल होगा। उसके बाद है वचन, बहुत इम्पोर्टेंट वाचा। कभी ब्राह्मणों में वाचा के ऊपर आजकल अटेंशन कम है, इसलिए बाबा दादिया बार बार कहती हैं कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो। बोल के ऊपर बहुत अटेंशन चाहिए, क्योंकि लोग तो हमारे संकल्प को तो नहीं जानेंगे ना, हमारी जीवन क्या है वो हमारे वचन से मालूम पड़ जाता है। आप कितने भी अच्छा अच्छा संकल्प चलाए परंतु वचन ठीक नहीं है तो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। कहते हैं ना कि एक शब्द अर्श पर भी पहुंचा सकता है, फर्श पर भी पहुंचा सकता है। एक शब्द सुई धागे का भी काम कर सकता है, किंची का भी काम कर सकता है। इट कैन बेंड और इट कैन मेंड। देखो ना महाभारत में द्रौपदी का एक शब्द लड़ाई करा दी ना। यही एग्जाम्पल है ना, हम लोग का ही तो एग्जाम्पल है। वो कोई दूसरी द्रौपदी नहीं थी। उसने तो हंसी हंसी में ऐसा कह दिया। बाबा इसलिए कहते ना कि हंसी हंसी में भी हमारे मुख से ऐसा शब्द नहीं निकलना चाहिए जो दूसरों को दुख पहुंचाए। तो हमको सोच समझ करके बोलना है। पहले तोलो फिर बोलो। इसका परिणाम क्या होगा? आपने तो बोल दिया, अपने पेट से निकाल दिया, परंतु उसका परिणाम क्या होगा, कहां तक चलेगा, तो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल है ना। ऐसा नहीं कि अज्ञानियों के साथ हम अच्छा अच्छा बोलते हैं, फिर ज्ञानी सामने आते तो वैसे वैसे बोल देते। नहीं, पहले तो हमको आपस में ऐसा व्यवहार चाहिए। कोई कोई आपस में ऐसा बोलते हैं ना, कोई कोई आपस में ऐसा बोलते जैसे कि झगड़ा कर रहे हैं। किसी किसी कोई पूछते कि ये क्यों झगड़ा कर रहे, परंतु कहते हम बोलते ऐसा है। नहीं, एक एक वचन हमारा खजाना है, इसलिए इकोनॉमी चाहिए। हमारा वचन वचन नहीं महावाक्य बन जाए। महावाक्य को ही वरदान कहा जाता है। तो आज सन्यासी गुरु महान आत्माओं के वचन को महावाक्य क्यों कहा जाता है? कहते हैं ना कि उनके मुख से ऐसा कोई हमारे लिए शब्द ना निकले, शराब बन जाएगा। तो क्योंकि वो कम बोलते हैं। महात्मा गांधी भी देखो हफ्ते में एक बार मौन रखते थे, मुख का मौन, तो उनमें ताकत जमा होती थी। फिर उसके बाद जो बोलते थे कर्म, उसमें शक्ति होती थी। तो हमको हर वचन हर शब्द को खजाना है, खजाना, क्योंकि एक शब्द किसी को ऊपर भी चढ़ा सकते, नीचे भी गिरा सकते। इसलिए चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, समान वाले हो, सम्मान का शब्द, मीठा शब्द, बाबा कहते ना मोती समान, सुख देने वाला शब्द निकले, नहीं तो बोलो ही नहीं। ऐसा बोलने से तो न बोलना चाहे। तो गिनती करो, आज हमारा वाक्य महावाक्य रहा या ऐसे ही जो बहुत बोलते हैं ना उसका कोई नहीं सुनता है, जो कम बोलते हैं उसको सुनना चाहते हैं, क्योंकि उसमें रस होता है ना, सार होता है। उसके बाद है कर्म, हमारा कर्म भी हमारे खजाना है। इसलिए बाबा ब्रह्मा बाबा सदैव क्या याद रखते थे, जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख दूसरा करेंगे। तो इसलिए हमको ऐसा नहीं कि जो चाहे हम करें, ऐसा नहीं। कर्म करने के पहले त्रिकालदर्शी की स्थिति पर स्थित होकर के कर्म करना है। तो हमारा कर्म कभी भी विकर्म नहीं बनेगा, क्योंकि जो कर्म करेंगे उसका संस्कार हमारे अंदर बनेगा ना। कर्म का संस्कार कैसा बनता है? कर्म के आधार से। और कर्म कैसा करते हैं? हमारे संकल्प के आधार से। पहले संकल्प आता है, फिर बुद्धि निर्णय करती है और कर्म कर लेते। कर्म कर लिया उसको मिटा नहीं सकते। इसलिए बाबा कहते ना रोज मुरली में, आज हम आपको करम अकरम विकरम की गति सुनाते हैं। तो बाबा सुनाते हैं, परंतु हमको प्रैक्टिकली उसको फॉलो करना है। तो अच्छे कर्म को जमा करना है। आज भी बाबा ने मुरली में कहा ना, चेक करके देखो हमारे से कोई भी ऐसा कर्म तो नहीं होता है जो बाबा का नाम हम बदनाम करते। देखो कई माता ही ना, गृहस्थ में रहने वाले आते हैं सेंटर पर, मुरली सुन के जाते हैं, फिर घर में कुछ हो जाता है, समझो गुस्सा आ गया, किसी को थप्पड़ मार दिया, तो घर वाले क्या कहेंगे? अच्छा यही बाबा ने आपको सिखाया, आज यही आपकी ओम शांति ने सिखाया, तो क्या किया हमने? बदनाम किया। बाबा ने तो सिखाया नहीं, हमने कर लिया। नो एक बार क्या हुआ, एक माता थी, बहुत अच्छी माता, रोज क्लास में आती थी, सबको घर में सुना दिया था भगवान आ गया है, हमको भगवान का महावाक्य सुनने के लिए सेंटर पर जाना है, और सबको माता के ऊपर भावना थी, तो सबने समझा अच्छी बात कह रही होंगी। तो उसकी बेटा रोज उसको सेंटर पर छोड़ के आता था, वो खुद नहीं जाते थे पर छोड़ के आता था, मुरली सुनने के लिए जाती थी। तो फिर क्या हुआ, धीरे धीरे थोड़ा सा आलस्य, अलबेलापन, तो सुबह बच्चा तो कार में बैठ के वेट कर रहा है माता को, माताजी तो उठी नहीं, सो गई, आई नहीं। एक दिन ऐसा हुआ, दूसरा दिन, तो फिर बच्चा ने पूछा, क्या तुम्हारा बाबा आज नहीं आया क्या मुरली सुनाने के लिए? उनको भावना थी और भावना को हमने तोड़ दिया, हम माया के वश हो गए, अलबेले होके सो गए आलस्य के कारण, तो डिसर्विस हो गई ना। तो आप सारे जीवन में अच्छा सर्विस किया, एक ऐसा कोई कर्म कर लिया डिसर्विस हो गए तो सारी पानी में चला गया। तो इसलिए हमको बहुत संभालना है कर्म। ऐसा इसलिए बाबा कहते ना, अपने आप को सदैव स्टेज पर देखो, हम स्टेज पर खड़े हैं, सारे विश्व हमको देख रहा है, तो हमारे से कोई भी ऐसा कर्म नहीं होगा जिसके कारण हमको पश्चाताप करना पड़े। तो कोई भी कर्म करने के बाद दिल खाती है ना, तो समझो वो गलत है, डेफिनेटली। अगर गलत कर्म नहीं तो दिल खाएगा ही नहीं, छुपेगा ही नहीं, तो उसको क्या करना है, फौरन बड़ों के पास जाकर के माफी ले लेना है। हो सकता है हम अलबेले थे, पुराने संस्कार के वश हो गए, संग दोष में आ गए, परंतु अभी दिल खाता है तो हमको ये लगा ना ये रॉन्ग है, हा? तो जाके बड़ों से माफी लेकर के उसको दोबारा नहीं करना है। समझो हमको समझ में भी नहीं आता है हमने गलत किया है, और बड़े हमको समझाते हैं, तुमने ये किया ना ये ठीक नहीं है, तो फिर क्या करना चाहिए? थैंक यू, फिर दोबारा नहीं करना है। ऐसा नहीं सिद्ध करने के लिए जावे, नहीं ना। तो कर्म भी हमारा जितना जमा करना चाहे अभी हम कर सकते हैं। उसके बाद है ज्ञान का धन। बाबा कहते ना, एक एक ज्ञान रतन की वैल्यू क्या है, लाखों रुपया है। आप देखो सारे दिन में एक बारी मुरली सुनते तो कितना कमाई करते, परंतु उसको अगर बढ़ाना है तो दान देना है। अगर दान नहीं देंगे तो खजाना बढ़ेगा नहीं, धन दिए धन ना कूटे। हमको याद है एक बारी दादी जान की सुना रही थी ना, एक बारी बाबा ने मुरली चलाया, मुरली चलाने के बाद जैसे हम सभी जाके नाश्ते पर बैठते हैं ना, तो दादी भी टेबल पर बैठी नाश्ते करने के लिए, थाली नाश्ता तो थाली में था, बस ऐसे बैठी थी, पीछे से बाबा आ गया, बोला अच्छा नाश्ता कर रहे हो ऑलरेडी, किसी को ज्ञान सुनाया? बिना सुना के भोजन कर रहे हैं। तो दादी को लग गया, अभी तक भी आप देखो दादी जानकी को जब तक एक आत्मा को भी कुछ ज्ञान नहीं सुना है तब तक खाना नहीं खाएंगे। खुद पहले मुरली सुनेंगे और फिर किसी एक आत्मा को भी सुनाना है कुछ, उसके बाद ही खाना खाएंगे। तो इन्हीं आदत हम लक्ष्य रखते हैं ना, बाबा हमारे सामने किसी न किसी को भेजेगा। दान देना जरूर है ज्ञान रतन, परंतु रतन ऐसे ही ज्ञान माना रिपीटेशन नहीं। कभी हम गुणों का दान माना बाबा ने जो आज कौन सा गुण बताया है, वो गुण को अगर हमने जीवन में धारण कर लिया ना, तो हमारे संपर्क में जो भी आएंगे उनको वो दान मिलता रहेगा। समझो आज बाबा ने सहन शक्ति के बारे में बोला, तो हम मुरली सुन करके गए अपने कामों में, तो हमारे सामने कोई आके गुस्सा किया। आते हैं ना परीक्षाएं, तो हमको क्या करना है? अगर उसको ज्ञान दान देना है, गुणों का दान, तो हम उसके साथ गुस्सा ना करें। भले हमारे ऊपर वो गलत कुछ बोल रहे हैं, फिर भी हम गुस्सा ना करें, तो हमने दो फायदा उसको दिया। एक तो आपने सहन शक्ति का दान दिया, आपने गुस्सा नहीं किया ना, तो आपने सहन शक्ति का दान दिया और उसको साथ में क्रोध नहीं किया, तो आप उसको क्रोध न करने का शांति का भी दान दिया। तो पाठ तो नहीं पढ़ाया, लेक्चर तो नहीं दिया, परंतु दिया ना दान। तो ये अटेंशन हमको चाहिए, क्योंकि आजकल बाबा कहते ना अनुभव कराओ। लोग सुन सुन करके थक गए हैं, तो अनुभव कैसे कराएंगे? जैसे अभी समझो आप बीमार है, आपको दर्द है बॉडी में, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है, परंतु आप सहन शक्ति का दान दूसरों को कैसे देंगे? आपको मिलने के लिए लोग आते हैं, लोगों को पता है आप बीमार है, आपको दर्द है, परंतु उनको आपसे प्रेरणा मिले। आपको कोई आकर के नहीं कहे अयो बिचारी कितना दर्शन कर रही है, यो बिचारी बाबा आपको ठीक कर देगा, ऐसा कोई ना कहे। हम ऐसी स्थिति पर रहे, हमको देख के उसको बाबा की याद आ जावे। माना दुख दर्द में भी दुख ना हो, ये कर्मचित अवस्था है ना। दर्द है, प्रैक्टिकली है। अभी हम दादी को देखते, उसी दिन दादी आई, हमने सुना ना 7 बजे तक दादी को बहुत बहुत दर्द थी, परंतु स्टेज में कुछ दिखाई देता था, हाँ वो किया, दुख नहीं। वो स्टेज, ऐसे ऐसे समय पर हम गुणों का दान, शक्तियों का दान, कोई शरीर छोड़ देते अचानक, तो उसी समय भी हम ज्ञान दे सकते, मुख से नहीं ज्ञान दे सकते हैं, पर हमने दुख नहीं किया, रोया नहीं, जो करना है सब कुछ किया पर रोया नहीं, तो दूसरों को ज्ञान मिला ना, ऐसा कैसे इनकी स्थिति हो सकती? इनमें कुछ ज्ञान है जीवन के बारे में। तो ज्ञान रत्नों का दान जितना करेंगे शक्ति गुणों के रूप से, उतना हमारा जमा होता है। और ऑफ कोर्स बाकी विनाशी धन भी तो खजाना है। भक्ति मार्ग में भी भगवान के नाम से दान पुण्य करते थे, परंतु वो तो एक जन्म के लिए मिलता था। अभी हमारा जो कुछ हम सफल करते हैं तो 21 जन्मों का मिलता है। 21 जन्म तो क्या सारे कल्प के लिए मिल जाती, क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट है, हम इनडायरेक्ट नहीं। वहां तो कृष्ण के नाम से, गरीबों के नाम से दान करते थे, फिर भी भावना अच्छी थी तो भावना का बाड़ा मिल जाता था, परंतु अभी हमको पहचान है, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश हुआ है, उस पहचान के आधार से हम अपने धन को सफल करते। तो हमको उसके रिटर्न में बहुत जन्मों का मिल जाता है। तो जब भी हम कोई विनाशी धन को सफल करते ना, बाबा ये नहीं देखता है कि आप कितना दे रहे हो। समझो कोई गरीब है, हफ्ते में 10 रुपया कमाते हैं, 1 रुपया भी दे दिया, शाहूकार है 1000 कमाया 100 दे दिया, दोनों को बराबर मिलता है ना, नहीं बराबर मिलता है। भावना देखते बाबा। कभी कभी हम पूछते भगवान भूखा है क्या, बताओ भगवान भूखा है या भूखा है? सचमुच है, तभी तो हम भोग लगाते हैं ना। भोग किसको लगाते हो आप? खाने का भूखा नहीं, खाना बनाने वालों के मन में जो भावना है उसका भूखा है। तो हम जब भोग लगाते हैं ना, तो खाने का खुशबू नहीं लेता बाबा, वासना लेता है। वासना, वासना माना मन की भावनाएं, क्योंकि बाबा को नाक तो है नहीं खुशबू लेने के लिए। तो बनाने वालों की जो भावनाएं जो पहुंचता है बाबा को, तो जो कुछ हम करते हैं ना बाबा के यज्ञ में, हमारी भावना अच्छी होनी चाहिए। कई बार भक्ति मार्ग में भी लोग करते हैं ना दान पुण्य, नाम के लिए, शान के लिए, और यहाँ पर भी कभी कभी हम देखते हैं कोई कोई लेके आते हैं इतना चिल्लर पैसा, और बाबा के कमरे में जब सभी बैठे रहते हैं ना योग में, वो आवाज आवाज करके एक एक पैसा डालते, सबका ध्यान जाता है, अरे देखो ये कितना कर रहे है। नहीं, गुप्त दान महापुण्य, एक हाथ करे दूसरा हाथ को मालूम ना हो, वर्णन नहीं करना है, तभी हमारा जमा होगा। इसलिए कंपटीशन चल रही है अभी संगम युग में, जो सफल करेगा वो सफलता को पाएगा। जो अगर कहेंगे ना कल करेंगे, आज नहीं, और रात को ही हम चले जाएंगे, तो सोचने से जमा नहीं होगा, जो करेगा वो पाएगा। इसलिए अच्छा कर्म करना है तो आज ही अभी करना है, बुरा कुछ करना है तो बाद में। तो इसलिए संगम युग छोटा युग है, परंतु ये छोटा युग में बहुत काल का प्रारब्ध हम जमा कर सकते। भले आप देरी से आए हो, परंतु अगर आज से लेकर भी आप ये लक्ष्य रखेंगे ना जमा करने का, तो आगे जा सकते। खर्च कम जमा ज्यादा, इकोनॉमी, लाइफ ऑफ इकोनॉमी, इनकार्नेशन ऑफ इकोनॉमी, तभी आपका सब सफल होगा। और इकोनॉमी का अवतार बनने के लिए एक नामी होना चाहिए, जो एक नामी होगा वही इकोनॉमी का अवतार बनेगा। क्योंकि उनके लिए कोई है नहीं, तो एक ही है, एक का ही नाम है, एक ही सब कुछ है, तो हम सफल करते जाएंगे। अगर हमको जमा करना है तो यही युक्ति है, तो ऑटोमेटिकली हमारा व्यर्थ खत्म हो जाएगा। कभी कभी पूछते ना ब्रह्म कुमारी संस्था कैसे चलते, हम कहते ना अपने तन मन धन से, तो हमारा धन हम कैसे देते? जो खराब काम में यूज करते थे उसको सफल कर रहे हैं, बाकी तो कोई भूखे नहीं मर रहे हैं, बाकी जो खराब काम में जाते थे टाइम उसको हम सफल कर रहे हैं। इसलिए बाबा कहते ना कभी ये भी नहीं सोचो कि हमने बाबा को दिया, ये भी इंसल्ट है। बाबा को चाहिए क्या? वो तो दाता है, सूरज के सामने एक कैंडल जला दो तो क्या है? तो हमने नहीं दिया, पर हमने एक्चुअली जमा किया। तो इसलिए बाबा कहते ना सेवा माना मेवा, इंस्टेंट फ्रूट, अभी भी प्रत्यक्ष फल भी मिलता है, खुशी, शक्ति और भविष्य का भी जमा होता है। तो गिनती करके यूज करो, संकल्प रूपी खजाने को, समय को, تاکہ ہمارا زیادہ جمع ہوتا جائے گا. اور جس نے سب خزانوں کو جمع کیا ہے وہ سدیو سیف نشچنت رہیں گے, اور ان کے ساتھ جو رہتے ہیں وہ بھی نشچنت رہیں گے, کیونکہ ہمارے ساتھی ایسا ہے تو ہم کو کوئی چنتا نہیں. تو اس لیے ورتمان سمے ہم کو ویرت کا شبد ڈکشنری سے نکال دینا ہے. کوئی کوئی سے دادی پوچھتے نا, آج کل آپ کا کیا پرشارت چلتی ہے, کیا اٹینشن رکھتے ہیں, تو کوئی کوئی براہمن بہت مزے سے کہتے ہاں ویرت نہ چلے اس کا اٹینشن رہتا ہے. دادی کہتے گئی پت وہ تو اولڈ فیشن ایفرٹ ہے. ابھی تک بھی اگر ہم کہتے کہ ویرت کے اوپر اٹینشن تو سمرت کب بنیں گے. تو اس واری مدھوبن سے سب پرکار کے ویرت, واچا کرم وچن سنکلپ سمے سب کی بچا جمع, تو تب ہم سمرت بنیں گے. اور سمرت جو ہوں گے وہ جو سوچیں گے وہ ہو جائے گا, جو بولیں گے وہ ہو جائے گا, کیونکہ اس میں طاقت رہتی ہے. تو اس لیے یہ لکش رکھنا, بدھی کو آپ جاگرت رکھو. جیسا ہی سنکلپ آتا ہے نا پرکھ لو کہ ویرت ہے تو چھوڑ دو. جیسے ابھی چاول صاف کرتے نا, پتھر دیکھتے تو کیا کریں گے, نکال کے پھینک دیں گے نا. تو ایسے ہم کو بھی پرکھنے کی شکتی چاہیے. وہ کب کام کرے گا؟ جب بدھی جاگرت ہوں گے. اوکے, اوم شانتی.